शक्तिवान बेहद के बाबा ने हम बच्चों को अपना बना करके पवित्र बनना सिखा दिया। पवित्रता के सागर ने हम बच्चों को इतना श्रेष्ठ और ऊंचा बनाया जिस पवित्रता के आधार पर ही बाबा ने अपने बच्चों को पूजनीय बनने की राह बता दी। वास्तव में देखा जाए तो ब्राह्मण जन्म इसका आधार ही पवित्रता। सतयुग और त्रेता युग में योग बल की पैदाइश है। द्वापर और कलयुग में भोग बल की पैदाइश है, परंतु पुरुषोत्तम संगम युग पर हम बच्चों की पैदाइश ब्रह्मा मुख के द्वारा डायरेक्ट पवित्रता के सागर के द्वारा हम बच्चों को अपना बना करके गोद का बच्चा बनाया। गोद के बच्चे को हमेशा धर्म का बच्चा कहा जाता है। वैसे भी लौकिक में कोई बच्चे को गोद लेते हैं तो कहेंगे ये हमारा धर्म का बच्चा है। धर्म का मतलब ही पवित्रता है। तो पवित्रता के सागर ने हम बच्चों को अपनी गोद का बच्चा बना करके हमारा जन्म ही पवित्रता के द्वारा हुआ है। तो जिनके जीवन का आदि काल ही पवित्रता है, जिनके जीवन का फाउंडेशन ही पवित्रता है, जिनका सिंगार ही पवित्रता है, जिनका धर्म ही पवित्रता है और जिन आत्माओं का धर्म ही पवित्र दुनिया की स्थापना करना है, कर्तव्य श्रेष्ठ कर्तव्य ये पवित्रता। वैसे भी आप अगर देखेंगे तो जो भी धर्म स्थापक होकर के गए, जिन्होंने धर्म की स्थापना की, धर्म स्थापना का आधार पवित्रता और सहनशीलता। बाबा ने भी हम बच्चों को सत धर्म स्थापन करने के लिए निमित्त बनाया तो हमारा भी मूल जो गुण है, स्वधर्म है, वो पवित्रता है, जिस पवित्रता के बल से ही हम पवित्र दुनिया स्थापन करने में बाबा के मददगार बनते हैं। बाबा ने तो हम बच्चों को पवित्रता की महानता बताई, श्रेष्ठता बताई, क्योंकि जितना जितना आत्मा पवित्र बनती जाती है उसी आधार पर बाबा की आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित करती है। बाबा हमेशा बच्चों को कहते हैं कि जब सुई पर कट होती है तो कितना भी पावरफुल चुंबक होगा तो वो उसको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। जितनी जितनी कट निकलती जाती है उतना उतना वो सुई चुंबक की तरफ आकर्षित होती जाती है। सिर्फ खुद आकर्षित नहीं होती है परंतु चुंबक उसके अंदर अपना आकर्षण छोड़ता है, जिस आकर्षण के आधार पर एक सुई से दूसरी सुई, दूसरी सुई से तीसरी सुई। एक बच्चे लोग, हम लोग देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, एक चुंबक ले गए और इतना टाचनी या सुई लेके एक हनुमान की पूछड़ी बना दे। तो ये जो आकर्षण है, ये आकर्षण उनको कहाँ से मिलता है? सुइयां सब एक दो को आके चिपक जाती है, चुंबक उनको अपना आकर्षण देता। तो उस रीति से जितनी जितनी हमारी प्यूरिटी की परसेंटेज बढ़ती जाती है, उतना उतना रूहानी आकर्षण बढ़ता है, जिस आकर्षण के आधार से अनेक आत्माओं को, आत्माओं का कनेक्शन हम बाबा के साथ कर सकते हैं। विश्व उद्धार का फाउंडेशन भी पवित्रता है। पवित्रता के आधार पर ही अनेक आत्माओं का उद्धार करके, उनको बाबा का बना करके, उसके द्वारा वर्षा प्राप्त कराने के लायक बनाते। जबकि बाबा ने हम बच्चों को इतना महान बनाया, श्रेष्ठ बनाया, तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करेंगे कि पवित्रता जो है वो कहाँ तक हमने अपने जीवन में धारण की। क्योंकि पवित्रता, इसमें सच्चाई सफाई भी आ जाती है। जो स्वच्छ चीज होती है कहते हैं ये पवित्र चीज है, तो उसी प्रकार आत्मा पवित्र है, अर्थात ही उसमें सच्चाई है, उसमें सफाई। मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क व्यवहार, इन सब की शुद्धि, इन सब की पवित्रता, हमारी पवित्र आत्मा की पवित्रता की मात्रा को बढ़ाती। कलयुग में तो ए टू जेड सब आत्माएं अपवित्र हैं, तभी तो पवित्रता के सागर को आना पड़ा। तो बाबा ने जब हम बच्चों को क्षुद्र से ब्राह्मण बनाया, तो पहले पहले बाबा ने हम बच्चों के हाथ में कंगन बांधा पवित्रता का, पवित्र बनो राजयोगी बनो। जब तक पवित्र नहीं है तब तक योगी भी नहीं बन सकते हैं। योग का आधार ही पवित्रता है। हम कभी ऐसा नहीं कहते हैं योगी बनो पवित्र बनो, हमारा स्लोगन ही है पवित्र बनो योगी बनो। पहले पवित्र पीछे योगी, अगर पवित्रता नहीं है तो योग नहीं। योग का आधार पवित्रता है। सबसे पहली मुख्य पवित्रता हम देखते हैं मनसा की पवित्रता। बाबा ने हम बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनाया है। मनसा की पवित्रता क्या है? अभी अभी बात चल रही थी कि अशुद्ध संकल्प, अशुद्ध संकल्प से मन जो है वो मैला होता है, अशुद्धता उत्पन्न होती है। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को मनमना भव की स्थिति में स्थित रहना सिखाया। वास्तव में देखा जावे ब्राह्मण माना सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, ब्राह्मण अर्थात ही ब्रह्माचारी, ब्रह्मा बाप का आचरण करने वाले अर्थात ही ब्राह्मण। ब्रह्मा बाप ने हम बच्चों को प्रैक्टिकल में पवित्रता क्या होती है इसका मिसाल बन करके बताया कि पवित्रता ये कितनी श्रेष्ठ और ऊंची चीज है। तो अभी बाबा, उस समय पर बाबा हम बच्चों को कहते थे, बच्चे वाणी और कर्म में अगर आएगा तो विक्रम बनेगा, अगर संकल्प कुछ चल भी जाते हैं तो उसके लिए बाबा माफ कर देते थे क्योंकि हम छोटे छोटे बच्चे थे। परंतु पहले दिन से लेकर के मम्मा के पास ये धारणा थी और मम्मा हम बच्चों को ये बताती थी कि आज बाबा भल आपको कहते हैं कि कोई व्यर्थ संकल्प चलते हैं, कोई अशुद्ध संकल्प चलते हैं तो विक्रम नहीं बनते हैं, परंतु एक दिन ऐसा आएगा जो बाबा आप बच्चों को संकल्पों के लिए भी समझा नहीं देगा। और मम्मा का इस बात के ऊपर फुल अटेंशन था, इसीलिए मम्मा बाबा हमेशा कहते थे देखो तुम्हारा बाबा नंबर वन बना, परंतु तुम्हारी माँ तो प्लस वन बनी। इसीलिए पहले राधा पीछे कृष्ण गाया गया है, पहले लक्ष्मी पीछे नारायण गाया गया। तो मम्मा ने पहले दिन से ही अपने ऊपर मेहनत की कि मनसा में भी कोई फालतू संकल्प व्यर्थ संकल्प विकल्प तो बहुत दूर की बात रही, परंतु व्यर्थ संकल्प तक भी नहीं आवे, वो है मनसा की सच्ची सच्ची प्यूरिटी। और व्यर्थ संकल्प अगर चलते हैं तो हमारा समय भी नष्ट होता है, व्यर्थ संकल्प चलने से हमारी शक्ति भी लीक होती है और आत्मा शक्तिहीन बनती जाती है। एक तरफ हम बाबा को याद करके अपने अंदर शक्ति भरते हैं और दूसरी तरफ अगर मनसा में हमारे को संकल्पों के ऊपर अगर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो जैसा देखो पानी की टाकी है, ऊपर से नल तो चालू है पानी भर रहा है, परंतु नीचे से अगर उसको छोटा सा भी छेद होता है तो पानी लीकेज होकर के टाकी खाली हो जाती है। तो वैसा बुद्धि योग बल से हम बाबा से ताकत ले रहे हैं सर्वशक्तिवान से, और दूसरी तरफ अगर हमारी व्यर्थ मनसा चलती है तो वो हमारी शक्ति क्या होती है, लीक हो जाने के कारण खलास हो जाती है, जिसके कारण आत्मा निर्बल बनती है। निर्बल बनने के कारण समस्याओं का परीक्षाओं का सामना नहीं कर सकती। जो जीवन में सफलता मिलनी चाहिए वो सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है, इसीलिए संकल्पों की पवित्रता ये भी बहुत ही आवश्यक है। ऐसा नहीं कि किसी काम विकार की सिर्फ बात है, सिर्फ काम विकार से पवित्र रहना माना पवित्र रहना नहीं, परंतु बाबा ने हम बच्चों को जो ये पांच विकार हैं, इनके बाल बच्चे भी हमारे अंदर नहीं रहे। अच्छा ईर्ष्या रही, वैर रहा, विरोध रहा, ये क्या है, इसको क्या कहेंगे, इसको प्यूरिटी कहेंगे। किसी के लिए ईर्ष्या होती है, यहाँ तक रीस, बाबा ने हम बच्चों को रेस करना सिखाया, रीस करना नहीं सिखाया। रीस ये अवगुण है, रेस ये दिव्य गुण। तो ये ह्यूमन रेस चल रही है, इसमें हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, परंतु हमारे को क्या करना है, किसी से कभी रीस नहीं करना। अगर रीस करते हैं तो अंदर में ईर्ष्या पैदा होती है, अगर ईर्ष्या पैदा होती है तो इम्प्यूरिटी, उससे खुशी नहीं मिलेगी। आप रामायण में देखो, हम लोगों के ही गायन है ये जो शास्त्र है, ये किसकी यादगार है, हम आत्माओं की, हम ब्राह्मणों की तो सारी यादगार में शास्त्र बने हुए। आप देखो सीता जो थी वो सिवाय राम के और किसी की नहीं थी, उसको राम की कितनी याद थी, वो एक व्रता थी, वो पतिव्रता थी, उस राम के कारण उसने क्या किया, उसे एक राम के कारण उसने अपनी राजाई छोड़ दिया, राजमहल छोड़ दिया, उसने यहाँ तक अपने पैर की चप्पल भी छोड़ दिया, बिगड़ चप्पल और वनवास में गई, उसको कितना सबने समझाया तो भी उसने इतना बड़ा त्याग किया, किसके लिए, राम के लिए। परंतु आप सीता की जीवन कहानी देखो, उसका कभी आपने हंसता हुआ चेहरा देखा, सदैव रोती रही, सदैव योग में ही रही, योग में नहीं रही। क्यों? जब तूने इतना बड़ा त्याग कर दिया, फिर रोने की जरूरत, दुखी होने की जरूरत? उसने त्याग तो किया, परंतु कौन सी भूल किया? फिर देखो, एक सोने के हरण के पीछे लगी, इच्छा पैदा हुई। बाबा कहता है इच्छा कभी भी अच्छा नहीं बनने देगी। तो इच्छा पैदा हुई कि ये हरण मुझे चाहिए। उस इच्छा के खातिर राम को उसके पीछे भगाया। उसने कितना समझाया कि ये ओरिजिनल नहीं है, ये माया भी है, परंतु इसने सुना नहीं, जिद किया, उसके पीछे भगाया। तो क्या हुआ? फिर जब उस मारीच को मारा राम ने, तो उसने राम की आवाज में लक्ष्मण को आवाज दिया। वो सुन करके इसने क्या किया? लक्ष्मण को भगाया। वो बेचारा बोलता है मैं नहीं जाता हूँ, ये मायावी आवाज है, राम का आवाज नहीं, परंतु उसका सुना उसने। उसके लिए अनुमान आ गया मन में। अनुमान क्यों आया? तेरी मेरे ऊपर दृष्टि खराब है, इसीलिए तू नहीं जाता है। बाबा कहता है अनुमान किसी को हनुमान नहीं बनने देता, महावीर नहीं बनने देता। देखो विकार कैसे हैरान करते हैं, ये इम्प्यूरिटी है, कैप्यूरिटी है, बताइए। फिर उसके बाद और तीसरी बड़ी भूल क्या किया? उस लक्ष्मण ने जो रेशा खींच के दिया, उसका उल्लंघन किया। तो कहां जाके पहुंचे? रावण की शोक वाटिका। तो हम भी अपने को देखें कि सचमुच मेरे मन में एक बाबा है, परंतु एक बाबा मेरे मन में होते हुए सदैव हम खुशी से नाचते हैं। अगर प्यूरिटी है, अगर ये विकारों के भी बाल बच्चे हमारे मनसा के अंदर नहीं है, तो हमारे को कभी गम नहीं हो सकता, हम कभी दुखी नहीं हो सकते, हम कभी उदास नहीं हो सकते। प्यूरिटी की कमी के कारण दुखी उदास होते। अगर किसी के अवगुण हम चित्त पर धरते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? प्यूरिटी कहेंगे, मनसा की। ये प्यूरिटी तो नहीं हुई। तो बाबा ने हम बच्चों को देह और देह की दुनिया को भूलना तो सिखाया ही, परंतु उसके साथ साथ ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इसकी तरफ भी बाबा ने हम बच्चों का खास क्या किया? ध्यान खींचवाया कि बच्चे तुम्हें इन बातों का तुम ध्यान रखेंगे, तभी पास विथ ऑनर बन सकेगे, तभी तुम धर्म स्थापना के लिए निमित्त बन सकेगे। अगर धर्म पर नहीं चलेगे तो धर्म स्थापना के निमित्त नहीं बन सके। तो अभी ये जो मन में हमारा मन इधर उधर भागता है, इसका कारण यही होता है कि मनसा के ऊपर कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल क्यों नहीं? उसको कोई ना कोई बीमारी। आज समझो हाथ है हमारा, ये मुट्ठी बंद नहीं हो, वे खुले नहीं, तो कोई डिफेक्ट है ना। तो मनसा के ऊपर कंट्रोल नहीं, माना मनसा में कोई ना कोई डिफेक्ट है ना। कौन सा डिफेक्ट होगा? यही छोटे मोटे विकारों। तो बाबा ने हम बच्चों को उसके लिए क्या किया? आत्माभिमानी बनना सिखाया। आत्माभिमानी स्थिति जो है, वो आत्माभिमानी स्थिति क्या है? आत्माभिमानी स्थिति ही पवित्रता को लाती। बाबा ने हम बच्चों को ये पाठ पक्का कराया, बच्चे तुम क्या करो, अंदर ही अंदर ये पक्का करो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने ये पाठ पक्का किया, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये पाठ पक्का होने के बाद दूसरी बात क्या पक्की किया? सामने वाले को भी क्या देखो? सामने वाले को भी आत्मा देखो, मैं भी आत्मा हूँ, ये भी आत्मा। उसकी भ्रुकुटी में देखो। बाबा ने यहाँ तक हम बच्चों को बताया। अव्यक्त बाप दादा की वाणी आपको याद होगी, जब आप किसी से भी मिलते हो तो उसको कौन से उसका आदि और अनादि रूप याद करो। अरे ये तो वही पूज्य आत्माएं हैं जिनका आज देखो मंदिरों में गायन और पूजन होता है। ये तो वही देव है, ये तो वही देवियां हैं। अगर ये दृष्टि तुम उसके लिए रखेंगे सामने वाले के लिए, तो कभी अपवित्रता का संकल्प भी आ सकता है। जरूर उसके लिए हमारे अंदर क्या होगा, उच्च भावना होगी, उसके गुणों की तरफ हमारा ध्यान जाएगा। एक दो के अवगुण देखना ये भी इम्प्यूरिटी, ये प्यूरिटी नहीं है। एक दो के अवगुण देखेंगे तो नफरत पैदा होगी, नफरत क्या है, घृणा पैदा होगी, नफरत पैदा होगी। परंतु अगर हमारी आत्मा अभिमानी स्थिति होगी, सामने वाले को हम आत्मिक रूप से देखेंगे तो क्या होगा, उसके लिए रूहानी प्यार पैदा हो। तो बाबा ने हमारी मनसा को इतना साफ बनना हमें सिखाया। वाणी की पवित्रता में बाबा ने क्या बताया, तुम बच्चों की वाणी पवित्र, पवित्र वाणी माना पवित्रता माना ही सत्यता। तुम्हें सदैव वाणी के द्वारा सत्य बोलना है, क्योंकि इस वाणी के द्वारा असत्य बोल बोल करके हम खुद ही असत्य बन गए। अभी हम जितना है जितना इस वाणी के द्वारा, बाबा क्यों बोलता है ज्ञान के बिगर और कुछ, से हमेशा रतन निकलने पक्का करते हैं। बाबा रोज पाठ पक्का कराता है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच के बोलो, ये रोज सिखाता है ना हम बच्चों। तो हम ब्राह्मणों की वाणी हमेशा सत्य होनी चाहिए, असत्य वाणी हम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हम सत्य युग की स्थापना करने वाले। तो इसीलिए जितना हो सके उतना कम से कम बोले, मधुर बोले, सत्य बोले। तो जितना जितना हम सत्य बोलना सीख जाते हैं, जो सत्य बोलेगा उसको सत्य के मार्ग पर चलना ही पड़ेगा। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बाबा ने ऐसी युक्ति की हुई है, आप पढ़ो भी और साथ साथ में पढ़ाओ भी। और कहा ऐसा नहीं होता है, पहले डिग्री लो बाद में पढ़ाना, परंतु यहाँ पढ़ना और पढ़ाना दोनों साथ साथ में। क्यों? क्योंकि आप जब दूसरों को पढ़ाएंगे तो खुद को पढ़ना ही पड़ेगा। आप दूसरों को आप कहेंगे झूठ नहीं बोलो, खुद की वाणी के ऊपर आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। दूसरों को कहेंगे क्रोध नहीं करो, खुद के ऊपर आपको अटेंशन देना ही पड़ेगा। तो हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कैसे बने, उसके लिए बाबा ने बड़ी अच्छी युक्ति की हुई है कि बच्चे एक तरफ तुम सुनते भी जाओ, धारण भी करो, पर औरों को सुनाते भी जाओ, जो तुम्हें धारण करना क्या होता जाएगा, सहज होता जाएगा। तो ये जो वाणी की प्यूरिटी है, वाणी की प्यूरिटी माना सच्ची, दिल साफ। हमेशा देखो बाबा के लिए भी क्या कहा जाता है, दिल साफ तो मुराद हासिल। दिल साफ चाहिए मनसा के हिसाब से, और इधर वाणी भी क्या चाहिए, हमेशा सत्य चाहिए। जिसकी दिल साफ होगी उसकी वाणी हमेशा सत्य हो, वो असत्य कभी नहीं बोलेगा। क्योंकि बाबा ने उस बच्चों को क्या किया है, सत धर्म की स्थापना के लिए निमित्त रखा हुआ है, वो असत्य नहीं बोलेगा, परंतु सदैव क्या करेगा, सत्य ही बोलेगा। पर बाबा ने ये भी हम बच्चों को बताया, सच बोलो परंतु क्या करो, सभ्यता पूर्वक सत्य बोलो। कभी कभी ऐसा होता है, कोई कोई कहते हैं कि सामने वाले को हम तो सच्चा बोलते हैं। अरे सच्चा तो तुमने बोला, परंतु बाबा हमेशा साकार बाबा बच्चों को हंसाते थे। बाबा कहते थे बच्चे जूता मारो पर मखमल का जूता मारो, समझा। अभी तुम किसी को सीधा काना होगा उसको बोलेगे तुम काना है, उसको गुस्सा लगेगा या नहीं लगेगा? काने को काना नहीं बोला जाता है। आप उसको बोलेगे ना भाई आपको देखने में थोड़ा फर्क है सर, हाँ बहन जी ये ना मेरा जन्म से ही ऐसा है, तुरंत मान लेगा इस बात। तो बाबा भी हमेशा कहते थे समझो किसी में कोई डिफेक्ट है, किसी में कोई कमी है, तुम उसको सीधा जाके कहेगे ना, तुम कहेगे मैं तो सत्य बोलता हूँ ना, ये ऐसा करता है। तुम सत्य तो बोलते हो, परंतु अगर सभ्यता पूर्वक नहीं बोलेगे तो वो सत्य उसको कड़वा लगेगा। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, लोगों को सत्य सभ्यता पूर्वक नहीं बोलना आता है, इसीलिए कहते हैं सत्य कड़वा होता है। वास्तव में सत्य कड़वा नहीं है, सत्य मीठा है, परंतु सभ्यता पूर्वक बोलने वाला सत्य मीठा। तो हमारी वाणी में सभ्यता भी जरूर होनी चाहिए, सत्यता भी जरूर होनी चाहिए, निर्माणता भी जरूर होनी चाहिए। अगर इन बातों को ध्यान में रख करके हम करते हैं तो उससे क्या होता है, फायदा होता है, नुकसान नहीं होता। मम्मा हमेशा इस बात के लिए समझाती थी, आप किसी को भी बैठ करके जब समझाते हो, उसकी कमी बताते हो, उसकी कमी बताने के पहले उसकी विशेषताएं उसको बताओ। चार विशेषताएं बता के अगर एक आपने कमी बता दिया ना, उसको फील नहीं होता। आप सीधा उसको बोलेंगे तूने ऐसा किया तो फील होगा, परंतु आप उसकी थोड़ी सी महिमा कर दो, आप में ये विशेषता है, आप में ये विशेषता है, आप में ये विशेषता, ये थोड़ा सा जो है ना इसको थोड़ा ठीक कर डालो, वो हाँ हाँ मैं जरूर ठीक करूँ, तो उसको क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अगर मेरे में इतनी विशेषताएं हैं तो ये एक विशेषता भरने में कौन सी देरी लग। तो ये हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए जो अनेक आत्माओं का क्या करे, उससे कल्याण हो, उनका उत्थान हो। क्योंकि इन कर्म इंद्रियों के द्वारा हमने जन्म जन्मांतर बहुत पाप किए हुए, अभी इन कर्म इंद्रियों को शीतल करने के लिए, कर्म इंद्रियों को पवित्र करने के लिए हमको कई गुना ज्यादा पुण्य कर्म करने पड़ेंगे, तभी ये कंट्रोल में आए, क्योंकि ये हमने किए हैं ना ऐसे पाप। बाबा कहते हैं ना बच्चे, पहले तो पाप हुई है परंतु अभी तो तुम बच्चों को ध्यान रखना है ना कर्मों के ऊपर, अटेंशन रखना है ना, अभी हमारे द्वारा कोई ऐसे पाप कर्म न हो। इसीलिए हमारा स्लोगन भी क्या है, सुख दो सुख लो, ये भी वाणी का है ना। किसी को दुख देना ये भी क्या है, इसको क्या कहेंगे, प्यूरिटी कहेंगे इम्प्यूरिटी कहेंगे, ये क्या है, प्यूरिटी तो नहीं जा सकते है ना। पवित्रता सुख देने वाली है, पवित्रता माना ही रोशनी है। देवताओं को आप देखो हमेशा उनके ऊपर लाइट का ताज है, तो पवित्रता माना रोशनी है ना, प्रकाश है ना। तो जब पवित्रता को धारण करते हैं तो कर्मों के आदि मध्य अंत को जान करके पीछे कर्म कर सकते, पवित्रता ऐसी चीज है। उसके बाद हम देखते हैं कर्मों की पवित्रता, कर्मों को कैसा श्रेष्ठ बनाया जावे, अपने कर्मों को कैसा ऊंचा बनाया जावे। वो बाबा ने हम बच्चों को बहुत अच्छा बताया हुआ है करके, फॉलो फादर करते चलो, देखो तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ बनते हैं ये नहीं बनते, सुखदायी कर्म करो, बाप को फॉलो करो, जितना जितना फॉलो करेंगे उतने उतने तुम्हारी कर्मों की श्रेष्ठता उसमें आती जाए। अगर किसी भी देहधारी के लिए आकर्षण है, देह के लिए आकर्षण है, वस्तु के लिए आकर्षण है, पदार्थ के लिए आकर्षण है, तो बाबा का आकर्षण कम हो जाए। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को ये प्रैक्टिस कराई कि तुम्हें किसी की देह को देखना ही नहीं। ये जो आज सन्यासी घर बार छोड़ के भाग के जाते हैं और कहते हैं स्त्री नागन है, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये शरीर जो विष से पैदा हुआ है, विकार से पैदा हुआ है, वो इस देह को देखते हैं, नाग को देखते हैं, इसीलिए उनको डसता है। परंतु बाबा ने हम बच्चों को क्या बताया, तुम नाग को नहीं देखो, मस्तक मणि को देखो। नाग के पास आपको मालूम होगा ना, मस्तक मणि होती है उसके पास, जिसके ऊपर वो बैठ करके अपना रात को भक्ष ढूंढता है। तो बाबा ने ये जो आत्मा है इसको देखने की प्रैक्टिस हम बच्चों को क्या कराई, पक्की कराई कि बच्चे जितना जितना तुम आत्म अभिमानी बन करके सामने वाले को आत्मा देखेंगे, उतना उतना क्या होता जाएगा, पवित्रता की धारणा तुम्हारे अंदर सहज होती जाएगी। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को बताया कि आपस में भाई बहन भी नहीं समझो एक दो को, परंतु भाई भाई समझो। तो जब भाई भाई की दृष्टि होती है तभी पवित्रता सहज धारण हो जाती है, भाई बहन की भी दृष्टि नहीं। और देखना है तो कौन सी दृष्टि से देखो, ये पूज्य आत्माएं हैं, ये श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ये ऊंची आत्माएं हैं, दूसरों को ऊंचा देखते देखते खुद भी ऊंचे बन जाएंगे। क्योंकि हमारा जो भी खेल है जीवन का वो है बुद्धि योग बल। हम जो प्राप्तियां करते हैं बाबा से, बुद्धि के बल से प्राप्तियां करते हैं। आज शांति लेते, शक्ति लेते, जो भी अनुभूतियां हैं बुद्धि के द्वारा होती है। तो बाबा ने हम बच्चों को ये बताया, तुम्हारा तुम्हारी बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए और तुम्हारा मन हमेशा साफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। तो बुद्धि की लाइन क्लियर कभी होगी? जब हमारी मनसा क्लीन हो। जैसी जैसी मनसा क्लीन होती जाती है, विकारों के रहित होती जाती है, वैसी वैसी लाइन क्लियर होती जाती है। और क्लीन होने की देखो क्या जरूरत है। आपको मालूम होगा कोई भी ऐसी वैसी चीज अगर पानी में गिरती है, मैला पानी होगा तो चीज दिखाई नहीं पड़ती, परंतु अगर स्वच्छ पानी है, बड़ा तालाब है, उसमें एक सुई भी गिरेगी ना तो क्लियर दिखाई पड़ती। क्लीन होने से क्या होता है, जजमेंट पावर आती। तो जितना जितनी हमारी मनसा क्लीन होती जाती है, उतनी उतनी हमारे अंदर परखने की शक्ति आती जाती। जिसके अंदर परखने की शक्ति होगी, उसके अंदर जजमेंट करने की भी पावर होती। तो आप पहले से ही माया को परख सकते हैं, क्योंकि माया बड़ी चतुर है। माया ऐसा नहीं छोड़ देती है, हम आधा क्लब के ग्राहक है उसके, पुराने ग्राहक है। पुराने ग्राहक को कोई छोड़ेगा? अरे कोई दो चार बारी भी किसी से माल खरीद करेगा ना तो भी कोई नहीं छोड़ता है। हम तो आधा क्लब से 2500 वर्ष से इससे माल लेते आए, ये हमको कैसे छोड़ देगी? तो ये अपनी तरफ आकर्षित करती रहती, अनेक रूप लेती और अपनी तरफ आकर्षित करती। परंतु हमें ये देखना है, उसको परखने की हमारे में ताकत चाहिए, और परखने की ताकत तभी होगी जब हमारा मन स्वच्छ होगा, साफ होगा, अंदर बाहर स्वच्छता। ऐसा नहीं कभी कभी कोई ऐसी अपनी नेचर बना लेते, अंदर एक बाहर दूसरा, नहीं। बाबा को सच्चाई और सफाई अच्छी लगती। सच्चे दिल पर साहब राजी, झूठे दिल पर राजी नहीं होता है। दिल साफ तो मुराद हासिल। अगर हमारी दिल साफ है तो हमारी जो भी शुभ कामनाएं हैं वो सब पूरी होती, परंतु दिल साफ नहीं है तो पूरी नहीं होगी। बाबा के दिल के ऊपर बैठना है तो दिल तख्त के ऊपर बैठना है, उसके लिए भी क्या चाहिए? सच्चाई की आवश्यकता। और देखो बाबा ने हम बच्चों को ये बताया है कि दिन प्रतिदिन समय बहुत नाजुक आने वाला है, समय बहुत खराब आने वाला है। उस समय पर तुम्हारे ये जो भी साधन है साइंस के, ये कोई भी काम नहीं करने वाला। ये तुम्हारा वायरलेस सेट भी काम नहीं करेगा, टेलीफोन काम नहीं करेगा, इंटरनेट काम नहीं करेगा, परंतु तुम्हारी वॉइसलेस स्थिति काम करे। अगर तुम्हारी वॉइसलेस स्टेज होगी, निर्विकारी स्थिति होगी, तो वही क्या करेगी? वही काम करेगी। तुम कैच करेंगे। आज समझो कुछ भी होने वाला है तो पहले से बाबा तुम बच्चों को इशारा देगा और तुम उस स्थान से दूर हट जाएंगे। छत गिरने वाली है, तुम्हारे को इशारा मिलेगा, पर हमारी बुद्धि का ठिकाना नहीं होगा तो इशारा कैसा क्या मैं कैच करेंगे। अगर बहुत समय से पवित्रता की स्थिति को हमने धारण किया हुआ है तो बाबा के जो भी संदेश है उनको हम सहज कैच कर सकेंगे। और अंत के समय तो कोई कहाँ होगा, कोई कहाँ होगा, कोई कौन सी परिस्थिति में होगा, कोई कौन सी परिस्थिति में होगा, उस समय हमें मदद कौन करेगा? बाबा की मदद होगी ना। उस समय ऐसा थोड़े ही ऐसा ब्राह्मणों का संगठन होगा, क्या होगा कुछ बोल नहीं सकते ना। तो हमारी बुद्धि की लाइन इतनी क्लियर हो जो हम बाबा के हर डायरेक्शन को क्या कर सके, कैच कर सके। अगर बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है तो बाबा के डायरेक्शन को पकड़ नहीं सकेंगे, बाबा के डायरेक्शन को कैच नहीं कर सकेंगे, तो अपने को सेफ नहीं रख सके। तो इसीलिए ये बात हमें हमेशा क्या करना है, ध्यान में रखना है कि हमारे को हमारी बुद्धि की लाइन को क्लियर करना है। इसीलिए उस पर से कट निकालनी है मुझे, एक बाबा की याद में रह करके उस कट निकाल करके आत्मा रूपी सुई को मुझे साफ जरूर बनाना। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को ये पक्का कराया, बच्चे बुरा मत देखो। क्यों नहीं देखो? क्योंकि देखेंगे उसका मनसा के ऊपर इफेक्ट होगा, बुरा सुनेंगे उसका मनसा के ऊपर इफेक्ट होगा, बुरा बोलेंगे उसका मनसा के ऊपर, सबका इफेक्ट तुरंत मनसा के ऊपर होता। क्योंकि देखा हुआ कितना भी कोई बोले, हम देखते हैं ना, पर हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता है। देखते असर नहीं होता, फिर देखने का मन क्यों करता है? कभी कभी कोई कोई बताते हैं हमारे को ना, हम ऐसा ही देखते हैं, अभी टीवी चलता है ना, हम देख लेते हैं, इंटरनेट पर भी पता नहीं क्या क्या आजकल आता है वो भी देखते हैं, क्या जरूरत? जहां हमको जाना ही नहीं वहां का रास्ता क्यों पूछने का, ये बताओ। जहां जाना होता है उसका, आज मेरे को सिरोही जाना ही नहीं है तो मैं पूछेगी कि सिरोही कौन सा रास्ता जाता है? तो जब मेरे को नरक में जाना ही नहीं है तो उसका रास्ता मैं क्यों पूछेगी कौन सा रास्ता है जाने के लिए? मुझे जाना ही स्वर्ग में है, तो हमारे आगे तो वो ही रहना चाहिए ना, सदैव सदैव वो ही याद रहना चाहिए ना। बाबा ने कल की कितनी बाबा की पावरफुल मुरली थी, हाँ, तुम्हारे द्वारा औरों को क्या दिखाई पड़े, अपना घर याद आवे, नई दुनिया याद आवे। बाबा हमेशा कहते हैं तुम बच्चे बच्चों के ये नयन जादू की डबियां हो जाएं, तुम्हारे नयनों में से मुक्ति जीवन मुक्ति का साक्षात्कार हो। परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति का साक्षात्कार तब होगा जब मेरे नयनों में सदैव एक मुक्तिदाता दिखाई पड़ेगा, मुझे दिखाई पड़ेगा सदैव, और कोई नजर नहीं आएगा, बाबा के बिगैर और कोई नजर नहीं आएगा। नहीं तो माया अपना जाल बिछाती रहती है, अपने जाल में फंसाती रहती। लास्ट में भी आप देखो बाबा ने किस रीति से, साकार बाबा ने अपने जीवन को किस रीति से सफल किया, एक सेकंड भी बाबा ने कभी व्यर्थ नहीं गमाया। सदैव कार्य में, ईश्वरीय कार्य में बाबा सदैव बिजी रहे, और सर्व बच्चों के साथ देखो बाबा कैसा न्यारा और प्यारा होकर के चला। इतने ढेर बच्चे होते हुए बाबा की किसी में अटैचमेंट रही? कितनी पालना किया बाबा मम्मा ने बच्चों में, बच्चों की, पर कभी किसी में अटैचमेंट नहीं रखी। दादी प्रकाशमणि ने कभी अटैचमेंट रखी? हमारी जानकी दादी की, गुलजार दादी की किसी में अटैचमेंट है? नहीं, अकेले आए अकेला जाना, वो प्रचारित करना। तो बाबा ने प्रैक्टिकल में करके बताया ये कि ये एक बाबा दूसरा नहीं कोई। हमारी दादियों ने वो करके बताया, मम्मा ने करके बताया, तो हमें भी ये देखना है कि हमारी बुद्धि में सिवाय बाबा के कोई देहधारी तो नहीं सामने आता। अगर हमारे को ऊंच पद पाना है तो जबरदस्ती की बात नहीं है। कल बाबा ने कहा ना, कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो मिलेगा वो चलेगा, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्या दरकार है मेहनत करने। हमारे पास एक बच्ची थी, वो बोलती थी मेरे को ज्यादा मेहनत नहीं करनी। क्यों नहीं करनी है? तो बोला मेरे को ना श्री कृष्ण का, क्योंकि श्री कृष्ण को 100 दासियां होती हैं, तो बोला मेरे को श्री कृष्ण की दासी बनना है, और दासी भी वो बनना है जो उसके पैर में बूट पहनाती है। अरे क्यों? क्योंकि अभी दासियां तो अलग अलग होगी ना, 100 दासियां क्या क्या काम करती है, एक एक थोड़ा थोड़ा कुछ काम होगा, तो ज्ञान तो समझ में तो आता था ना उसको। बोला देखो अभी जो समझो प्रजा बनेंगे या राजा ही घराना भी बनेगा तो रोज थोड़ा ही कृष्ण को देखेगा, रोज तो नहीं देख सकेंगे ना, तो उससे तो उसकी दासी बनना अच्छा है ना, उसको रोज उसके नजदीक रहेगी ना, मैं उसको रोज उसके पैरों में बूट पहनाएंगी। इसीलिए पुरुषार्थ भी बूट जैसा ही करती थी, ज्यादा पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं, मेहनत करने की जरूरत नहीं। बाबा कहता है ना ये क्या है, ये आधी नींद है ना, अलबेलेपन। तो कभी कभी चलते चलते ऐसा होता है जो क्या कर लेते हैं, तीव्र पुरुषार्थ के बजाय जो मिलेगा संतुष्ट। बाबा कहता है ना संतुष्ट रहो, तो इस बात में संतुष्ट बन जाते, जो मिलेगा वो चलेगा। सतयुग में मेहनत तो कुछ है ही नहीं, ना दास दासियों को मेहनत है, ना प्रजा को मेहनत है, ना राजाओं को मेहनत है, किसी को भी मेहनत नहीं है। फिर क्या सतयुग में तो जाने को मिलेगा ना। परंतु हम जो बाबा के समर्पण बच्चे हैं, हम बाबा के ऊपर बलि चढ़े हुए बच्चे हैं, अगर हम राजाई घराने में नहीं आवे, हम राजपद नहीं पावे, तो बाबा का बन करके क्या किया हम लोग। हाँ, आने वाले कभी ऐसे कोई ढीले ढाले हुए तो उनको भी हम पूछ करते हैं, परंतु हम अगर ऐसा समझते हैं जो मिलेगा सो चलेगा, बाबा ने कहा ना ये भी आधी नींद हो गई। कहा जाता है सोए हुए को जगाया जाता है, जागे हुए को कौन जगा सकता। अलबेलापन ऐसा है जागे हुए को जगाना, सोए हुए को तो कोई भी जगा देगा, परंतु जो जागा हुआ होता है, ढोंग करके सोया हुआ होता है, हाँ हाँ उठता हूँ उठता हूँ, अंदर से जाग रहा है परंतु तुम हिलाते रहो, उठने का नाम नहीं लेता है। अलबेलापन ऐसा हिलाता रहता है बाबा। बच्चे कहते हाँ बाबा, हाँ हम जाग रहे हैं बाबा, हम सुन रहे हैं आपका सारा। अरे सुन तो रहे पर कर रहे है, कर रहे क्या वो देखो ना तुम। ऐसे कोई है क्या जो समझते जो मिलेगा वो चलेगा, हाथ ऊपर करो। तो वो तो कोई नहीं है ना, होना भी नहीं बनना भी नहीं ऐसा। जो मिलेगा सो क्यों चलेगा, उसके लिए थोड़े ही हम लोग बाबा के बने हैं। तो इसीलिए हमें ये हमेशा ध्यान में रखना है, जैसे हमारा बाबा पवित्रता का सागर है, हम बच्चों को भी मास्टर पवित्रता का सागर बनना। हमारे अंदर संकल्प में भी कभी अपवित्रता हमको टच न करे, कभी टच भी नहीं करनी चाहिए। देहधारियों को देख, देह को देखना माना किसको देखना हो गया, देह को देखना माना किसको देखना हो गया बताओ। एक तो सांप हो गया और दूसरा मुर्दा। मुर्दा कहते हैं ना, आत्मा निकल गई तो क्या कहते हैं, ये मुर्दा है। पहले हम मुर्दे ही तो थे, मुर्दों की दुनिया तो है, सब अपने को क्या समझते, देह समझ के चल। तो देह को देखना माना मुर्दों को देखना, इसीलिए हमें तो देह को नहीं देखना है। कभी देखना है तो किसको देखना है, आत्मा को देखना है, मस्तक मणि को देखना है, देखना है तो बाबा को देखना। हम बच्चों के अंदर जो बाबा के समर्पण बच्चे हैं, उनके अंदर इम्प्यूरिटी का संकल्प आना ये भी महापाप, क्योंकि जितनी प्राप्ति है हमें बाबा का बन करके, अगर हम बाबा के श्रीमत के अनुसार नहीं चलते हैं तो उतना दंड भी है हम लोगों। बाबा कहता है तुम लोगों के लिए खास ट्रिब्यूनल बैठेगी, सुना, उसके लिए खास ट्रिब्यूनल बैठेगी कि इन्होंने ये पाप किए, उसका उसकी सजा क्या है। तो हम ऐसा काम ही क्यों करें, धर्मराज का काम क्यों बढ़ावे अपन, उससे तो क्यों नहीं यहाँ ही पूरे संपूर्ण 100% प्योर बन करके और पीछे पास हुई थानर होकर के अपने घर में जाओ। और जितना जितना ये प्यूरिटी की मात्रा अपने अंदर बढ़ती जाती है, उससे वातावरण एकदम चेंज होता जाता, शांति के वाइब्रेशन फैलते हैं, क्योंकि पवित्रता ये सुख और शांति की जननी है। तो पवित्रता के आधार पर ही सुख और शांति की अनुभूति होती है, औरों को करा सकते हैं। अगर पवित्रता नहीं है तो सुख शांति की अनुभूति नहीं होगी। शिव बाबा भले करते रहो पर सुख शांति का अनुभव नहीं होगा। अगर पवित्रता की धारणा हमारी पक्की है तो सुख शांति का अनुभव हो सके। और ऐसा नहीं, इम्प्यूरिटी का मतलब कोई मेल फीमेल की बात है, कोई भी देहधारी होने दो, किसी भी देहधारी में हमारी बुद्धि गई ये इम्प्यूरिटी। हमारी बुद्धि में एक ही बाबा रहे, एक नामी, एक व्रता। हम सब सजनिया हैं उस साजन की, ऐसा कोई साजन नहीं चाहेगा मेरी सजनिया बेवफा हो जावे। हाँ, वो तो गेट आउट कर देवे लात मार के, उसको मार भी डालते हैं ऐसी सजनी को तो। परंतु हमारा साजन कहता है तुम कभी मेरे को धोखा नहीं देना, हे सजनिया, मैं एक ही बारी तुम्हें ऐसा साजन मिलता हूँ जो सदा के लिए क्या बना देता, सुहागन बना देता। वहाँ पर कभी विधवाएं नहीं होती। नई दुनिया में बाबा ऐसी दुनिया की स्थापना करता है। तो हम आत्माएं जब उसकी सजनिया हैं, तो मेरे को अपने से प्रश्न पूछना चाहिए कि हम कितने उसके साथ वफादार है। मनमोहिनी दीदी की ये बहुत बड़ी विशेषता कि वो हमारा शिव साजन है, मैं उसकी सजनी, मैं उसकी गोपी हूँ, उसके साथ मेरे को कैसा नाता निभाना है, मेरी कितनी सच्चाई और सफाई होनी चाहिए, उसके बगैर कोई भी याद नहीं आवे मुझे, एक बाबा ही याद रहे, सुख में दुख में सदैव एक बाबा याद रहे। तो दुख की कभी फीलिंग ही नहीं हो सकती, कोई भी परिस्थितियां आने दो, अरे उनका काम है आना, हमारा काम है भगाना, आएगी नहीं, नजदीक नहीं आएगी। बाबा ने देखो इस प्यूरिटी के आधार पर लास्ट में हम बच्चों को जाते जाते मुरली सुना करके जाते जाते कौन सा महामंत्र दिया, हाँ निराकारी, हाँ निराकारी निरंकारी निर्विकारी, ये क्या है, ये पवित्रता है ना? मनसा की पवित्रता माना निराकारी स्टेज, जितनी जितनी निराकारी स्टेज है उतनी उतनी मनसा प्योर। अपवित्रता का संकल्प आने सब, फिर निरंकारी वाणी की स्टेज, वाणी की पवित्रता माना निरंकारी। अगर अहंकार है, अहंकार ये क्या है, प्यूरिटी है इम्प्यूरिटी, इम्प्यूरिटी है ना अहंकार। हमारी वाणी में कभी भी अहंकार न हो, सदैव करण करावन हार स्वामी याद रहे। अहंकार कब नहीं आएगा, जब सदैव करण करावन हार स्वामी याद रहेगा। मम्मा हमेशा ये पाठ पक्का कराती थी, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, वो हुक्म चला रहा है और हम कठपुतलियां नाच रही। कठपुतलियों का खेल देखा होगा ना, कठपुतली खुद थोड़ी नाच सकती है, उसको नचाने वाला नचाता है, धागा बांध के नचाता है, वो नाचती है। तो हम बच्चों को भी वो नचा रहा है, वो सब कुछ करा रहा है। आप थोड़ा इसके ऊपर विचार करो, भक्ति मार्ग में भगवान ने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए पत्थरों से भी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण किया। मूर्तियां क्या है, पत्थर की है, पत्थरों से साक्षात्कार कराए। अरे भोग खाया, भगत जब ही मत्था तोड़ने पर आते, भगवान तू नहीं खाएगा तो मैं नहीं खाने वाला हूं, आखिर वो मूर्तियों ने खाया ऐसा बताते हैं, उसने स्वीकार किया भोग, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण किया भक्तों की। अगर भक्ति मार्ग में भगवान पत्थरों के द्वारा मनोकामनाएं पूर्ण कर सकता है, तो चेतन में आपके द्वारा और हमारे द्वारा किया तो कौन सी बड़ी बात, बलियारी किसकी हुई। कोई भी कार्य अगर उसने कराया हमारे द्वारा तो बलियारी किसकी हुई, बाबा की हुई, हमारी हुई, क्या बोलते हो, हमारी हुई, बाबा की बलियारी है, हम बाबा के हैंड्स हैं। आज समझो हमने आपको ये ग्लास दिया तो आप क्या बोलेंगे, मेरे को हाथ ने ग्लास दिया, हाथ तो मेरा है ना, तो व्यक्ति का नाम लेते हैं ना। वैसा ही अगर किसी को कोई भी अनुभूतियां हुई, हम बाबा के हैंड है, हमारे द्वारा नहीं देगा तो कैसा देगा, हमारे द्वारा ही देना है ना उसको, तो किसने दिया, ये बाबा ने दिया ना। तो बाबा इतना हमें सदैव याद रहे कि ये किसका कार्य और कौन करा रहा। जब ये हमें याद रहता है ना कि हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, वो करण करावन हर स्वामी करा रहा है और हम क्या कर रहे हैं, वो जैसा कराता है वैसा, हाथ को जैसा हिलाओ वैसा हिलेगा, तो हमको वो जैसा चलाता है वैसा हम चलते हैं, तो अहंकार आने की बात ही नहीं है, वाणी स्वतः ही क्या हो जाएगी, निरंकारी बन जाएगी। उसके बाद निर्विकारी, कर्मों में निर्विकारिता की बाबा ने हम बच्चों को पाठ पक्का कराया। तुम्हें अपनी स्थिति को कैसा बनाना है? निर्विकारी बनाना है, क्योंकि तुम संपूर्ण निर्विकारी देवी देवता बन रहे हो। वहां थोड़ी बनेंगे, यहाँ ही बनने का है। किसी भी विकार का अंश न रहे, अगर अंश है तो वंश बढ़ता जाए, अंश को भी खलास कर डाल। तो इसीलिए ये बड़ी सूक्ष्म चेकिंग चाहिए कि किसी विकार का अंश तो नहीं है जो धीरे 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 बढ़ के बहुत बड़ा वृक्ष हो जाता है। अगर होवे उसको निकाल करके जान, अगर थोड़ा भी होगा तो बढ़ने में कभी भी देर नहीं करेगा। तो बाबा के जो ये लास्ट महावाक्य है, अव्यक्त बनने के पहले बाबा ने जो हमारे को शिक्षा दिया हुआ है, निराकारी निरंकारी संपूर्ण निर्विकारी, इस शिक्षा को, ये तीन शब्दों को भी अगर हम जीवन में धारण कर लेते हैं तो जो पवित्रता की स्थिति है उसको पूर्ण रीति से फॉलो कर करके हम बाबा के समान बनने के लिए पुरुषार्थ में तीव्र गति में आगे जा सकते हैं। तो इसीलिए हम पवित्रता के सागर के बच्चे हैं। हमारे माला में जो मन के बनते हैं उसका आधार भी क्या है? पवित्रता है। जितने जितने पवित्र उतना उतना माला में नंबर आगे आता जाता है। तो इसीलिए हम पूजनीय भी बनते हैं, सिमरन के योग्य भी बनते हैं, गायन योग्य भी बनते हैं। बाबा तो हम बच्चों को बहुत ऊंचा बनाता है, इसीलिए हमें बाबा जो आज्ञा दी हुई है कि बच्चे पवित्र बनो और योगी बनो, उस आज्ञा को संपूर्ण रीति से फॉलो करके और बाबा से जरूर हम बच्चों को सर्टिफिकेट लेना है। ओम शांति।
पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय I'm not afraid to die।